वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आप सबका 11 दिसंबर के इस कार्यक्रम में जिसका नाम क्या है संध्या जागृति इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम हर मंगलवार को दोपहर को 2:30 बजे शुरू होता है और 3 बजे तक हम इसमें जप करते हैं और 3 से 4:45 बजे तक हम कथा करते हैं। तो हर एक व्यक्ति के लिए सत्संग की बहुत आवश्यकता है। कितने लोगों को विश्वास है इसके ऊपर? हरे कृष्ण। बिना संग के तो हम धन भी नहीं कमा सकते। और पैसे भी कमाना है ना, तो पैसे कमाने वाले लोगों का साथ चाहिए जो आपको हमेशा पंप लगाते रहेंगे। तो आप अगर पढ़ना भी आपको अच्छी तरह से है तो आपको अच्छे पढ़ने वाले लोगों के साथ में बैठना पड़ेगा। मुझे अभी भी याद है जब मैं MBBS कॉलेज में था तो फर्स्ट ईयर में कुछ पढ़ाई नहीं किया, फिर वही फास्ट हो गया। तो फर्स्ट ईयर MBBS में हमने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया। फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया और फाइनल एग्जाम जब आया ना तो भी जीरो ही था पढ़ाई भी। तो एक दिन घूमते घूमते लाइब्रेरी में चले गए तो क्या देखा लाइब्रेरी में, हमारा पूरा क्लास 200 विद्यार्थी हमारे क्लास के सारे लोग बैठे हैं, इतने इतने किताबें लेकर पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं। तो हमने फिर घर में बैठना छोड़ दिया और लाइब्रेरी में बैठना शुरू किया। और लाइब्रेरी में जब बैठे तो ऐसा पढ़ाई का मूड आया कि एक महीना केवल 3 से लेकर 5 बजे तक सोए 2 घंटा और फर्स्ट क्लास से पास हो गए फर्स्ट MBBS। तो क्या मैसेज है इसके अंदर कि दुनिया में कोई भी काम करना होगा ना, वो काम करने वाले लोगों का संग होना चाहिए तो ही वो काम आप कर सकते हैं। अच्छी पढ़ाई भी करना है, अच्छे गृहस्थ बनना है, माता पिता पति पत्नी अच्छे बनना है तो अच्छे पति पत्नी माता पिताओं के बीच में आपको रहना पड़ेगा। तो उनका आदर्श संग से आप आदर्श माता पिता पति पत्नी बन सकते हो। अगर अच्छे एम्प्लॉय बनना है आपको, प्रामाणिक सिंसियर हार्डवर्किंग नो चीटिंग, तो आपको प्रामाणिक सिंसियर नो चीटिंग वाले कर्मचारियों के साथ में हमेशा उठना बैठना पड़ेगा। तो फिर आप सिंसियरली काम करोगे, नहीं तो आप काम चोरों के साथ में काम करोगे तो आप भी अच्छे हो गए तो भी काम चोर बन जाएंगे। ये संघ का परिणाम है। संघ का परिणाम अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। कैसा संघ आपका है, जैसा संग वैसा रंग। तो उस दृष्टि से मनुष्य जीवन में संग बहुत आवश्यक है। संग आपके ऊपर असर करेगा ही, आप चाहो या ना चाहो। अगर आप बचपन में अगर झोपड़पट्टी में रहते थे और वहां पर आप पलकर बड़े हो गए हो, हाँ, तो वहां का असर रहेगा ही आपके व्यक्तित्व के ऊपर। अगर बिल्डिंग बचपन में हम चाल में रहे हैं और चाल में रहकर बाद में बड़े हो गए हैं तो आपको बचपन का असर रहेगा ही। जब एकदम अच्छे आप पढ़े लिखे हो जाओगे और बड़े हो जाओगे, अच्छी जगह पर जाओगे रहने के लिए, लेकिन जब गुस्सा आपको आएगा ना तो सारी बिल्डिंग वाली गालियां आपको आ जाएगी तुरंत, क्योंकि वो आपका मूलभूत ट्रेनिंग है। आपका आपने उसको दबा के रखा है, अभी आपने पढ़ाई से लिखाई से अच्छे घर पे रहते हो आप, अच्छे बिल्डिंग में रहते हो, अच्छे सोसाइटी में रहते हो, लेकिन जब गुस्सा आता है ना, झगड़ा का समय आ गया ना, सारी लैंग्वेज भूल जाते हो और वही लैंग्वेज यूज करोगे जो बचपन में यूज करते थे उधर बिल्डिंग में और झोपड़पट्टी में। ऐसा है, संघ का परिणाम इतना गहरा होता है। हरे कृष्णा। तो इसलिए संघ जो है ना वो अच्छे लोगों के साथ में करना चाहिए। और ये तो मैंने आपको एक आम बात बताई, अच्छे आदमी को अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, ये तो आम सोशल बात हो गई है। लेकिन मनुष्य जीवन में आकर संतों का संग हर मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में संग के बिना मनुष्य जीवन जानवर का जीवन है। संतों के संग के बिना मनुष्य का जीवन एक जानवर के जीवन के समान है। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? आप बोल सकते हो कि इतने कठोर वाक्य क्यों बोल रहे हैं आप, इतना कठोर वचन उपयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संत का संग केवल मनुष्य जीवन में ही उपलब्ध होता है। 50 कुत्तों के बीच में संत भी आएगा ना तो भी कुत्तों को खुराक नहीं पड़ेगा, वो खाली देखेंगे क्या खाने को दे रहे हैं मुझे, ये नहीं बोलेगा कुत्ता कि अभी क्या वचन सुनाएगा गीता के, मैं सुनूंगा उनके मुख से संत आए हमारे बीच में। नहीं, संत से भी वही दुम हिला के वो खाना ही देखेंगे, खाना मिलेगा क्या? क्योंकि खाना, सोना, पुनरुत्पादन यानी बच्चे पैदा करना और संकट में रक्षा करना अपनी, ये चार जो प्रवृत्तियां हैं वो जानवर की प्रवृत्ति है। हर एक जानवर के अंदर चार प्रवृत्ति होती है, खाने के लिए मेहनत करना, थकने के बाद सोने का इंतजाम, विश्रांति हर एक को चाहिए ना, कुत्ता बिल्ली हो या इंसान हो कीटक हो, सब सोते हैं, मच्छर भी सोता है, उसका रात भर काम करता है, दिन में सो जाता है वो कोने में जाकर, फिर रात को उठता है वापस। तो हर जीव को विश्रांति चाहिए, और हर जीव ये दो जरूरतें पूरे होने के बाद में फिर नर मादी को ढूंढते हैं, मादी नर को ढूंढते हैं, नर मादी को ढूंढता है और वो बच्चे पैदा करते हैं अपनी जो वंश है उसको, जाति को चलाने के लिए। और फिर कोई आपने को अटैक किया, अगर चिड़िया के ऊपर तोता ने अटैक किया या कौवे ने अटैक किया तो वो अपनी रक्षा करके या तो भाग जाते हैं या तो उन पर हमला करते हैं या तो छुप जाते हैं, जो भी कुछ है उनका अपना तरीका है, अपने अपने तरीके से अपनी अपनी रक्षा करते हैं भय से ही। तो ये चार चीज हर जीव के अंदर है, मनुष्य के अंदर भी है, लेकिन बाकी जीवों में इन चार के अलावा और कुछ नहीं है, केवल चार ही चार है, उसके आगे कुछ है ही नहीं। आप उनका पूरा जीवन देखोगे ना, जीवन भर, दिन भर देखोगे उनको, तो ये चार में से एक काम करते रहेंगे वो। आप किसी भी दिन कभी भी खिड़की में बैठो छुट्टी के दिन और बाहर देखो, किसी बर्ड को देखो या किसी कुत्ता के देखो, किसी गाय को देखो या किसी किसी को किसी भी जीव को देखो आप, वो ये चार में से एक काम करते हुए नजर आएगा आपको। या तो वो कुछ खाने के लिए मेहनत करता रहेगा, या तो विश्रांति लेता रहेगा, या तो सेक्स करता रहेगा, या तो सुरक्षा के लिए भागता रहेगा, कोई तो बड़ा आदमी आया तो उसको मारने के लिए। मनुष्य जीवन में भी ये चार चीज है, ऐसा नहीं कि हम लोग ये चार चीज नहीं करते, हम लोग भी ये चार चीज करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में इस चार चीजों के ऊपर जाकर कुछ करने की सुविधा मुभा भगवान ने दी है हमको। इसलिए हम मनुष्य हैं जिनका मन क्या कहते हैं, प्रगल्भ है यानी विकसित है, उसको मनुष्य कहते हैं, मानव कहते हैं। और मानव के जीवन में क्या प्रगल्भता है, ज्यादा क्या है जो वंदनीय है या सराहनीय है या जिस पर हम गर्व कर सकते हैं, वो क्या है? वो ये है कि मानव जीव में जीवन में जन्म लेने के बाद आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान क्या है समझ सकते हैं, ज्ञान क्या चीज है आप समझ सकते हो। इसलिए वो ज्ञान कौन देते हैं? संत लोग देते हैं, क्योंकि भगवान तो हमारे सामने तो है नहीं, हम इतने योग्य तो नहीं है कि उनको हम देख सकते हैं, उनके लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ऐसे भी क्वालिफिकेशन नहीं है भगवान देखने का, तो क्या करें फिर, उनको प्राप्ति कैसे करें? तो वो संतों के माध्यम से अपने विषय में अपने को, हमारे सब लोगों को ज्ञान देते हैं, और संतों से हम सीखते हैं कि भगवान कौन है, उनकी पहचान होती है। फिर संत लोग सिखाते भी है कि उनको प्राप्त भी कैसे करना है, फिर वो हम उसको अपनाएंगे प्रक्रिया को, तो हम उनको प्राप्त भी कर सकते हैं। लेकिन एक तो मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ बताया गया है, वो 84 लक्ष योनि में कुछ हिस्से मनुष्य के हैं, बाकी लाखों लाखों तो जानवर, कीटक, पंछी, जलचर, पेड़ यही भरे हुए हैं सब। जलदा नवलक्षाणी, जल के नीचे 9 लाख प्रजाति है, 9 लाख, ऐसा ही वर्णन आगे दिया गया है, जल के अंदर कितना है, थल के अंदर कितना है, आकाश में कितने उड़ रहे हैं, कीटक कितने हैं, ऐसे लाखों लाखों जातियां हैं उनकी। और ये सारे लाखों 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 होने के बाद में कहते हैं 4 लाख टाइप्स मनुष्य के, तो देवता तक भी आते हैं। नीचे के लोग जो है वो जानवर जैसे होते हैं, ऊपर के लोग देवता हैं उसके अंदर। उसमें राक्षस भी हैं, दानव भी है, सब लोग उसके अंदर, मनुष्य जो दो हाथ वाले हैं वो सब उसके अंदर आते हैं। और 4 लाख टाइप किसके हैं उसके अंदर, 4 लाख जो टाइप्स हैं वो उनके किस स्तर पर उनकी चेतना है, उनका भाव, उनकी प्रवृत्ति कहाँ पर है, उसके ऊपर उनकी जातियाँ। जैसे दानवों की प्रवृत्ति अलग है, राक्षसों की अलग है, देवताओं की अलग है, असुरों की अलग है, उसमें भी ग्रेड्स हैं। देवता में भी बहुत ग्रेड्स हैं, बहुत कुछ लोग देवता भोगी होते हैं बहुत सारे, कुछ लोग गणपति जैसे हैं, शंकर जैसे हैं, बहुत एडवांस्ड हैं। इतने प्रकार की प्रजातियां हैं वो 4 लाख में भी। और वो 4 लाख के स्तर पे हमको और आपको आना है तो भी बहुत दुर्लभ है, बहुत चक्र काटना पड़ता है। जैसे यहां से अमेरिका जाना है आपको, तो आपको बहुत समय तक फ्लाइट में बैठना पड़ेगा, कभी कभी चेंज भी करना पड़ेगा बीच बीच में। और अगर हमने बताया कि आपको रोड से जाना है यहां से अमेरिका, तो 6 महीने बाद पहुंचेंगे आप, इतना लंबा सफर है। वैसे अगर आप किसी और अन्य योनि में हो और आपको मनुष्य जीवन प्राप्त करना है, तो आपको बहुत जन्म के चक्र काटने पड़ेंगे, तब आपको जाके ऊपर कभी मनुष्य जीवन का लाभ मिलेगा। तो सब नंबर वन, मनुष्य का जीवन इतना दुर्लभ है, और नंबर टू, इस दुर्लभ जीवन को प्राप्त करने के बाद एक गलती आप कर सकते हो, अरे अभी तो इतनी बुद्धि प्राप्त हो गई है, इतना सुंदर शरीर प्राप्त हो गया है, हम बोल सकते हैं, हम गा सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, हमारे अंदर कितनी कला है, हम भोजन बना के खा सकते हैं, जानवर तो ऐसे ही खाता है, हम लोग तो क्या क्या उसके अलग अलग टाइप से खा सकते हैं, अपना हेयर स्टाइल कर सकते हैं आप, है ना, अत्तर लगा सकते हैं, कपड़े कितने प्रकार के पहन सकते हैं, ब्रिटिश, इंडियन, पंजाबी, महाराष्ट्रियन, ये वो 5000 प्रकार के कपड़े पहन सकते हैं। तो आपको लगेगा कि अरे इतनी अच्छी सुविधा प्राप्त है तो एंजॉय कर लो ना, कुत्ता बिल्ली के शरीर में कैसा एंजॉय करेंगे, सब तो नंगे ही घूमते रहते हो। कुछ कुछ पालतू कुत्तों पर दिल्ली में मैंने देखा, अभी कल गया था मैं, तो पालतू कुत्तों को एक कुत्ते का ड्रेस भी रहता है ठंड में पहनने के लिए। तो समझते हैं आपको, ये पालतू कुत्ते हैं, ये स्ट्रीट डॉग्स हैं। लेकिन वो जब इंसान जो कपड़े पहनता है, वो इंसान जो कपड़े पहनने वाला है, वो अगर पालतू जानवरों को पहनाएगा तो उसको मिलेगा, लेकिन जानवरों में संस्कृति नहीं कपड़े पहनने की, है ना। तो आपको लगेगा कि अगर हमको इतनी बुद्धि मिली है, इतना अगर सुविधा मिली है, तो क्यों ना एंजॉय कर ले, हम खाना पीना रहना सेक्स ये सब जो है एंजॉय करने के लिए मिलता है अपने को। क्या बोलते हैं वो, ये जिंदगी मिले ना दोबारा, एंजॉय। लेकिन स्पिरिचुअल लैंग्वेज में इसको दुर्भाग्य कहते हैं, क्योंकि जिस चीज के लिए वो मनुष्य शरीर आपको दिया है उसका पर्पस थोड़ा डिफरेंट है। जिसके लिए आपको दिया गया है उसको एक ही बार बंद कर दो पूरा घंटी उसकी, बार बार नहीं बजेगी वो। तो वो जो पर्पस है जिसके लिए, जिसने वो आपको दिया है, यानी भगवान ने आपको जो शरीर दिया है, ये जीवन दिया, उन्होंने एक अलग पर्पस के लिए आपको दिया है। वो ये है कि तुम इतना भटके, इतना लाखों लाखों योनियों में भटके, तो अभी तुमको एक मौका दे रहा हूं मैं मेरे पास लौट के आने का, दोबारा भटकने से बचने के लिए ये आपको एक यंत्र दे रहा हूं मैं, इस यंत्र का अच्छा इस्तेमाल करो और ये सब भटकना बंद करके मेरे पास लौट के आओ, फिर दोबारा भटकना नहीं पड़ेगा आपको, जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार फंसना नहीं पड़ेगा आपको। और हम सोच रहे हैं एंजॉय करना चाहिए, एंजॉय करने में क्या तकलीफ होती है बताओ। अभी आप बोल रहे हैं कि मैं जब एंजॉय करता हूं ना किसी को तकलीफ नहीं होती, मैं शराब पीता हूं, मैं सिगरेट पीता हूं, मैं दारू पीता हूं, मैं और कुछ करता हूं, किसी को कष्ट नहीं होता है, मैं अब किसी को कष्ट देता नहीं, मैं खुद एंजॉय कर रहा हूं। लेकिन उसमें क्या होता है कोई बोल सकता है? अगर किसी को तकलीफ देने रहे तो क्या नुकसान क्या उसके अंदर, यू एंजॉय, डोंट ट्रबल एनीबॉडी, हैप्पी हैप्पी, गड़बड़ क्या उसके अंदर? शरीर को तकलीफ होती है, सिगरेट पियेंगे तो कैंसर होता है लंग का, हाँ दारू पियेंगे तो लीवर का कैंसर होता है, लीवर खराब हो जाता है, और कुछ करेंगे तो और कुछ खराब हो जाता है। तो बोलेंगे कि मेरे को हो रहा है, आपको क्या, किसको तकलीफ तो नहीं हो रही है, लेकिन बाद में क्या होता है उसके, और तकलीफ क्या है उसके अंदर, वो ऐसा है, वो आप लोगों को ना सबको भक्ति विधान में जो भी आते हैं ना, जैसे आप लोग कुछ समय के लिए आए हैं, कुछ लोग परमानेंटली यहाँ पर रहते हैं, सबको पता होना चाहिए यहाँ पर जो एक बार आ गया, कि मनुष्य जीवन में कर्म का बंधन होता है। कुत्ता बिल्ली जब काटता है ना आपको, तो उसको कर्म लगता नहीं है। जब शेर किसी बच्चे को उठा के ले जाता है ना बस्ती में से आके, तो शेर को पाप नहीं लगता है, क्योंकि वो उसका प्राणी का शरीर है, उसका भोजन है, वो जो देखेगा वो खाएगा। अगर गाय तुम्हारे घर में आके मुंह डाल के केला खाएगी तो गाय को पाप नहीं लगता है। चूहा आके तुम्हारा बैग फाड़ देगा तो चूहे को कर्म लगता नहीं है। आपका बहुत नुकसान होता है, आपका बहुत सारा कीमती कुछ तोड़ देगा वो चूहा, आपके प्रॉपर्टी के पेपर सब खा जाएगा वो, इतना बड़ा नुकसान करेगा आपका वो, इतना तकलीफ में डालेगा आपको, लेकिन चूहे को कर्म लगता नहीं है। जैसे ही वो चूहे का जीव मनुष्य के शरीर में आता है, उसके बाद में वो जो भी करता है उसके कर्म उसको लगते हैं। तो अगर मनुष्य का शरीर प्राप्त करके अगर आप जानवर जैसे कार्य करने लगेंगे, मतलब आहार, निद्रा, सुरक्षा और सेक्स, इसी में लगे रहोगे, तो फिर वो कर्म के अनुसार आप वापस पुनश्च अरि ओम, वापस वहीं जाएंगे जहां से आए थे। इसका एक मजेदार एग्जाम्पल मुझे, मैंने सुना था बहुत पहले, मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ, समझो आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली आप किस तरह से जा सकते हो? एक तो हवाई जहाज से उड़ सकते हो स्ट्रेट बॉम्बे दिल्ली एयरपोर्ट, 2 आवर्स, या तो आप ट्रेन पकड़ सकते हो, सबसे फास्ट राजधानी, 14 घंटे में पहुंच जाएंगे। या तो ट्रेन का टिकट नहीं, कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? कार लेके जाएंगे, या तो बस करेंगे यहाँ से वहाँ, उदयपुर, उदयपुर से और कहीं, उधर से वहाँ से भी मथुरा, या वहाँ से आगे दिल्ली, ऐसा कर सकते हैं हम। ऐसे उतर के चढ़ के वापस बस से, रोड से जा सकते हैं, या पैदल भी जा सकते हैं। जा सकते कि नहीं? जाएंगे नहीं, बहुत अलग है, लेकिन जा सकते कि नहीं पैदल? कोई बोलेगा चलो मेरा अभी एक, मैं भी ऐसा एक रिकॉर्ड करना है मुझे, यहाँ से दिल्ली चल के जाना है, चलो कोई बात नहीं। लोग जाते भी हैं, उठा के वो कावड़ लेके जाते हैं ना, बहुत चलते हैं कहाँ कहाँ तक। तो इतने सारे तरीके हैं, और आप मेरे पास आए, सर हमको दिल्ली जाना है, और बहुत जल्दी जाना है, तो बोले ठीक है, ये लो हवाई जहाज, इसमें बैठो और जाओ, 2 घंटे में पहुंच जाओगे। और हमने आपको हवाई जहाज दिया, और वो पहले तो चलता है रोड पे ना, है कि नहीं? रोड पे चलता है, फिर स्पीड पकड़ता है, वहां से उड़ता है वो तैयारी करके, तो रोड पे चलाएगा हवाई जहाज, तो उसको अच्छा लगा, रहे बाप इतना बड़ा हवाई जहाज रोड पे भी चल रहा है, चलो यहाँ से रोड को चल, रोड से चल के जाते हैं, यहाँ से इसी हवाई जहाज को लेकर रोड से दिल्ली जाते हैं। तो जिसने आपको वो हवाई जहाज दिया है ना, वो एक सिग्नल पे आपको रोकेगा, बोलेगा ये प्लेन वापस करो, ये कार ले लो, वो कार से जाओ, क्योंकि तो इतना बड़ा उसके पंख है, उसके कहाँ कहाँ लगा के तोड़ तोड़ के जाएंगे तो कितना नुकसान करोगे आप। आपको रोड पे चलाने की इतनी इच्छा है, रोड पे जाने का, रोड ड्राइविंग करना है, कार ले लो आप, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी लो, बहुत फर्स्ट क्लास बड़ी, जाओ रोड पे। तो आगे फिर वो प्लेन खो बैठता है, और वो गाड़ी में बैठता है, कार में, और वहां से फिर 20-25 घंटा में ड्राइविंग करते करते दिल्ली पहुंच जाता है। अब ये स्टोरी सुनकर आपको क्या लगा, क्या सीखे आप? कि आपको 2 घंटे में दिल्ली पहुंचने का मौका था, लेकिन आपने सोचा कि मैं अभी थोड़ा प्लेन भी रोड पे चला लेता हूं, मिला ही है तो एंजॉय कर लेता हूं। तो इन द प्रोसेस वो 25 घंटे के पास बाद में दिल्ली पहुंचता है, थक के एकदम पूरा परेशान हो गए, क्योंकि खाना पीना तो रोड पे खाना पड़ेगा ढाबे पे, फिर बैठ बैठ के ड्राइविंग करना है, कमर टूटेगी उसकी, सोने को नहीं मिलेगा, हवाई जहाज में बैठेगा 2 घंटा सो जाएगा आराम से, बोलेगा ठाट करके उतर गया तो जग जाएगा, वापस उतर जाएगा और अपने घर चला जाएगा। वैसे ही मनुष्य जीवन में आने के बाद वो हवाई जहाज की तरह है, वो तेज गति से भगवान तक पहुंच सकता है। आपको क्या लगता है, अरे वो जानवर लोगों को इतना पक्का, मतलब पका के भोजन करने का सुविधा नहीं है, लेकिन हमारे पास है, चलो अलग अलग टाइप के खाना खाते रहेंगे, एंजॉय करेंगे, पंजाबी खाएंगे, साउथ इंडियन खाएंगे, राजस्थानी खाएंगे, ब्रिटिश ब्रेकफास्ट लेंगे, अमेरिकन लंच लेंगे, उसी में लगे रहेंगे। फिर बोलेंगे कुत्ता बिल्ली के अंदर क्या है, रोड पे भी ऐसे ही नर मादी मिलते रहते हैं, हम लोग तो पूरा एयर कंडीशन में रूम पे अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे, कुछ गोली खाएंगे, कैप्सूल खाएंगे, कुछ दवाई खाएंगे और एंजॉय करेंगे बहुत लंबे समय तक। भगवान क्या सोचेंगे, अरे इस जीव को मैंने, ये मनुष्य का शरीर तो मुझे प्राप्त करने के लिए दिया था, और ये तो पूरे भोग में ही लगा हुआ है, जानवरों को भी जो अवेलेबल है उसको अच्छी तरह से प्राप्त करने के लिए लगा हुआ है इसके पीछे। जानवर भी रोड के अंदर करते हैं, लेकिन वो अपने घर पे इतना सोफिस्टिकेटेड तरीके से करने जा रहा है, जानवर भी ऐसे ही खा लेता है तो ये अपना पूरा बढ़िया से बढ़िया खाना करने के पीछे लगा हुआ है, मतलब पूरा सुख लेने का कोशिश कर रहा है शरीर का। तो भगवान क्या बोलेंगे, अरे तुमको इतना ही जानवर को जो प्राप्त है वही एंजॉय करने का इतना ही मन है, तो ये शरीर में क्या कर रहे हो तुम? तुमको बहुत खाने की इच्छा है, चलो तुमको हाथी बना देता हूं। फिर हाथी तो 1-1 हजार किलो खाना खाता है एक टाइम पे। कभी कभी आपको लगता होगा ना इतना बढ़िया खाना है लेकिन पेट तो भगवान ने इतना सा दिया है। अरे कभी कभी शादी जाते हैं हम लोग, 250 आइटम होते हैं पता है। आज तक मैं जो सबसे शादी गया था, सबसे बेस्ट शादी में, मतलब बेस्ट नहीं बोल सकते, सबसे अधिक 250 आइटम थे उसके अंदर, और कुछ 25 काउंटर थे, अरेबियन से लेके लिबनीज से लेके, एक क्या आप सोचे भी नहीं होंगे कभी, इटालियन, स्पैनिश, फ्रेंच, ऐसे 25 काउंटर थे और 250 आइटम थे उसके अंदर। खा पाएंगे आप? एक टेस्ट भी करेंगे तो भी आपका पेट भर जाएगा 10 आइटम के बाद में। तो आपको क्या लगता होगा उस समय, काश मेरे पास अगर हाथी जैसा पेट होता तो मैं सुबह से चालू करता, शाम तक खाते रहता, हर एक आइटम का आनंद लेता। ऐसा आपको लगेगा ना उस समय, ये कमबख्त पेट इतना छोटा क्यों है। और समझो आप किसी छोटी शादी में गए और आपको लगेगा कि ये जलेबी इतना फ्रेश बना के रखी है, उसको केसर डाल के बढ़िया से बनाई है, लेकिन मैं 10 खा गया तो पैक हो गया। काश मुझे ऐसा पेट प्राप्त होता कि मैं 250 जलेबी खा लेता, ऐसा मन में विचार तो आएगा ना आपके कम से कम। या सोने के बारे में हमको ना कॉलेज में ऐसा एक विचार आता था मन में, एग्जाम हो गए ना अभी, ऐसा सोएंगे ना फ्राइडे शाम को सोएंगे ना तो मंडे को उठेंगे, शनिवार रविवार तो कैलेंडर में आना ही नहीं चाहिए, बीच में सीधा सोमवार, 2 दिन 2 रात दुनिया देखना ही नहीं है, और गोली वोली खा के भी सो जाएंगे ना, तो क्या आप 3 दिन सो सकते हैं लाइन से? कभी ट्राई किया आपने? हमने तो बहुत कॉलेज में बहुत सब स्टंट्स किए हैं, लेकिन बेचारे कमबख्त 12 घंटे के बाद तो जग ही जाता है आदमी, भले हैंगओवर में लेकिन उठ ही जाता है वो, उसको भूख लगती है या तो टॉयलेट जाना होता है, कुछ ना कुछ होकर वो जग जाता है, फिर वापस होएगा तो भी फिर वापस जाग आते हैं कुछ समय के बाद। कंटिन्यूसली आदमी नहीं सो सकता है, लेकिन मेंढक नाम का एक जीव है पता है ना, और ड्राव ड्राव करता है बारिश में, ये आपको नींद से जगाने के लिए था। तो वो कहते हैं 6 महीना लाइन से सोता है अंडर हाइबरनेशन, साइंस में पढ़ा था हमने बायोलॉजी में, बेडुक बेडुक 6 महीने जमीन के अंदर सोता है वो, कुछ नहीं होता है उसको, उसका हार्ट भी चलता है, सब कुछ चलता है, एवरीथिंग इज फाइन, और 6 महीने के बाद वापस आता है बाहर अपना जिंदगी का आनंद लेने के लिए। तो सोने में भी हम लोग कुछ बड़े आदमी नहीं है, क्योंकि मेंढक भी अपने एक ज्यादा एक्सपर्ट है, खाने में भी हम लोग एक्सपर्ट नहीं है क्योंकि हाथी हमसे एक्सपर्ट है, हाथी हमसे बड़ा है कि नहीं खाने में। सुरक्षा करने के बारे में सोचो आप, एक टाइगर है एक लायन है आपके सामने खड़ा है, आप भी सामने खड़े हो, वो भी निहत्ता है आप भी निहत्ता है, कौन विजयी होगा बताओ? आपके पास दिमाग है, आपके पास बहुत कुछ है, घर में गन है आपके पास, धनुष बाण भी है आपके पास, क्या क्या है, आप बटन दबा के इस रिमोट कंट्रोल में बॉम्ब डाल सकते हो उसके ऊपर, लेकिन सब घर पे है। अभी आप उसके सामने निहत्ता खड़े हैं, उसके पास भी कोई वेपन नहीं है, आपके पास कोई वेपन नहीं है, और बोलेंगे लग जाओ तो फिर 2 मिनट के अंदर आप कहीं के नहीं रहेंगे, खाली हड्डियां बचेंगी, सब खत्म हो जाएगा उधर। यानी कि सुरक्षा के मामले में भी कोई जानवर आपसे बढ़कर है, श्रेष्ठ है। रही बात लास्ट, तो बताने भी संकोच आ रहा है मुझे, लेकिन बताना जरूरी है हमको समझाने के लिए। सब लोग का दिमाग है ना आज वो सेक्स के पीछे भाग रहे हैं, एवरीबॉडी कॉलेज में स्कूल में सबका मन में तो ये विचार इतना भरा रहता ना कि क्या करूं और क्या नहीं करूं, शरीर क्या क्या पुकार रहा है, हर तरह से पुकार कर रहा है, मुझे उसको देना है शरीर को, क्या क्या लोग करते हैं कॉलेज में स्कूल में बता नहीं क्या क्या करते रहते। लेकिन उसका भी मनुष्य का एक लिमिट है, उसको अनलिमिटेड एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन आप कबूतर और सुअर को देखेंगे ना, दिन में 64 बार संबंध कर सकते हैं, हाँ मजे से एकदम, कोई थकान विकान कुछ नहीं होती, तो उसमें भी हम फेल हो गए। सुअर और कबूतर भी हमसे ज्यादा एक्सपर्ट है उसके अंदर, वो एंजॉयमेंट करने में। तो खाना पीना सोना सेक्स चारों चीज में हम फेल हो गए, तो आप सोचेंगे फिर मनुष्य जीवन में भगवान ने दिया है क्या ब्रह्म को, हमसे ज्यादा बलवान एंजॉयमेंट में जानवरों को बना के रखा है। लेकिन उन चारों चीजों में जो एक्सपर्ट हैं, हमसे कई गुना अधिक आनंद लेते हैं, उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। उनको सत्संग नहीं मिल सकता है, वो जीवन का उद्देश्य क्या है समझ सकते नहीं है, वो आत्मा है कि शरीर है ये इसका फर्क नहीं समझ सकते हैं, वो भगवान का हमारा रिश्ता क्या है वो जान नहीं सकते हैं, वो भक्ति नहीं कर सकते हैं, वो शरीर से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इतना सारा जो हाई लेवल का बेनिफिट आपको दिया है वो जानवर कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। हाथी जिंदगी भर हजारों टन खाना खाएगा ना तो एंड में उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा अगला शरीर प्राप्त होगा, वो अपना लाइन से आगे आगे बढ़ेगा और बाद में मनुष्य बनेगा। तो मनुष्य जीवन एक मौका दिया गया है आपको सब, किसको मौका दिया है वो जीव को, वो जीव जो कल जानवर के शरीर में था, मच्छर के शरीर में था, पंछे के शरीर में था, अभी वो उन्नति करते 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 वो मनुष्य के शरीर में आया है, इसलिए आज उसको मनुष्य कहा गया है। फिर उसका नाम है गिरीश, हाँ चव्हाण ऐसा नाम है उसको। आज कुत्ते को भी नाम रहता है लेकिन आम कुत्ते को नाम रहता है, कोई पालतू कुत्ता होगा तो उसको टॉमी और कुछ कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन रोड रोड के कुत्ते को नाम रहता है क्या? कोई पूछता नहीं उनको, ऐसे ही जन्म लेते हैं, घूमते रहते, खाना खाते रहते, भागते रहते, भोगते रहते। मनुष्य का जीवन बहुत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है। तो उसमें सत्संग उससे भी दुर्लभ है बोलते हैं, क्योंकि आदमी तो बहुत रहते हैं, सत्संग कितना लोग करते हैं बताओ, वो दुर्लभ मानव जन्म, लेकिन सत्संग जो है ना उससे भी दुर्लभ है। मनुष्य जीवन में भी एक दुर्लभ वस्तु है वो सत्संग है, वो बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। भगवान जब कृपा करते हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार कृपा करते हैं, तो फिर संत का परिचय होता है, नहीं तो कितनी लाखों लोगों के अंदर एक आदमी को संत की संगति प्राप्त नहीं होती, बहुत दुर्लभ है। आपको लगता है क्या कि भक्ति उद्यान में क्या आए दिन यहाँ पर संत लोग आते रहते हैं, कोई सापरण ब्रह्मचारी आ रहा है, कोई सन्यासी आ रहा है, कोई गुरु आ रहे हैं, कोई स्वामी आ रहे हैं, कोई गुरुदेव आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं बहुत दुर्लभ कैसे? नहीं, ये जगह ही दुर्लभ है इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं। आप वो हिंदुजा हॉस्पिटल में जाइए और पूछे कितने संत लोग आए आपके हॉस्पिटल में, बोला कोई नहीं आया। ब्रिज कैंडी में जाइए, जसलोक में जाइए, पूछिए एक साल में कितने संत लोग आए आपके पास, तो बोला नहीं आया। आम आदमी आते रहते हैं, बहुत धनवान बहुत आते हैं हमारे पास, बहुत धनी लोग आते हैं, फिल्म स्टार भी आते हैं, संत आए क्या? नहीं, संत नहीं आते हमारे पास। और भक्ति विधान में बोलो आप, रिकॉर्ड ब्रेक है पूरा इधर, क्योंकि ये जगह का भाग्य है, वो बनाया उसी के लिए। तो संत लोग यहाँ पर अपना इलाज करने को आते हैं, सोचते हैं कि हमारे इलाज के लिए भी एक अनुकूल स्थिति यहाँ पर है, भगवान का नाम है, प्रसाद मिलता है, सत्संग होता है, यहाँ पर कीर्तन चलता है, कोई लहसुन प्याज चाय कॉफ़ी भी नहीं चलता है, यहाँ पर प्रसाद ही प्रसाद प्राप्त है, सत्संग की सुविधा है। टॉक करेंगे तो उधर लेक्चर सुनाई पड़ता है प्रभुपाद जी का, और एक चैनल घुमाएंगे तो कीर्तन सुनाई पड़ता है, तो उनके लिए अनुकूल है, बीमार पड़ने के बाद भी अनुकूल है, हमारे सत्संग के ही वातावरण में हम लोग अपना शरीर का इलाज कर रहे हैं। तो इतना सारा मैंने 40 मिनट तक ये प्रस्तावना क्यों दिया आपको, कारण ये है कि संध्या जागृति क्यों करते हैं हम, इसके लिए बताया। संध्या जागृति इसलिए करते हैं कि भक्ति विधान में काम करते के समय भी आपको ये जीवन के उद्देश्य से टच रहना चाहिए, इसलिए बीच में एक हफ्ते में एक बार क्यों ना हो, आधा घंटा क्यों ना हो, पौना घंटा क्यों ना हो, ये रखा है प्रोविजन। कैसा रखा है? ऑन ड्यूटी। आपको ऐसा नहीं बोल रहे रात को 8 बजे आओ, रात को 8 बजे भी यहाँ कार्यक्रम होते हैं लेकिन कोई स्टाफ नहीं आता है उसके अंदर, अपने घर पे टीवी देखते रहते उस समय, तो हमने बोला ऑन ड्यूटी आ जाओ, चलो कोई बात नहीं, विद पगार के साथ में आ जाओ, आधा घंटा भगवान के बारे में सुनो, अपने जीवन का उद्देश्य के बारे में समझो। जैसे आप लोगों को भी इंटर्नशिप करने यहाँ पर आए हैं कि नहीं, कुछ दिन के बाद चले जाएंगे अपने अपने कोर्स में, लेकिन उसमें भी आपको ये मौका मिल रहा है जीवन का उद्देश्य क्या है समझने के लिए, क्योंकि जीवन तो आपका भी है, हमारा भी है और आपका भी है, भक्ति विधान में हो या नहीं हो सब लोगों का जीवन है, और जीवन सबका उद्देश्य एक ही है। ये मत समझना कि यहाँ के लोगों का उद्देश्य अलग है, बाहर के लोगों का अलग है, नहीं, सबके जीवन का पर्पज एक ही है, भगवान की प्राप्ति। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, और जानते कौन हैं, जिनको संत का कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली परिचय हुआ है ना, उनके ही द्वारा पता चलता है कि ये क्या है। हम डॉक्टर कैसे बने? किसी ने हमको प्रेरणा दिया डॉक्टर बनना चाहिए, डॉक्टर लोग कैसे देखो इतने सम्मान से रहते हैं, लोग कितना सम्मान करते हैं उनका, वो लोगों को ठीक करते हैं। ऐसे कभी लोगों को मिले हम लोग, हमारे फैमिली डॉक्टर को देखा था, कितना सम्मान है, कितना जादू है, जो मिलता है उसको ठीक कर देते, वो तो वहीं से प्रेरणा मिलती कि हमको भी डॉक्टर बनना चाहिए। तो कोई डॉक्टर मिला होगा ना पहले जिंदगी में, देखा होगा दूर से उससे, तब प्रेरणा मिली होगी, तब डॉक्टर बनने का इच्छा हुआ, फिर एग्जाम दिया, फिर मेहनत किया, फिर रैंक आया, फिर कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर 5-10 साल मेहनत किया तो डॉक्टर बन के आपके सामने बैठे। तो हर एक के, अभी भी आप इलेक्ट्रिशियन बने हुए हैं, कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगी आपको कि ये मुझे सीखना है। कोई कारपेंटर बना हुआ है तो कहीं ना कहीं बचपन में उसको प्रेरणा मिलेगी, मुझे लकड़ी का काम करना है, मुझे बहुत इंटरेस्ट है उसके अंदर। बिना प्रेरणा से कोई काम नहीं कर सकते आप। अभी रिसर्च में आप कुछ यहाँ पर इंटर्नशिप कर रहे हो, कुछ यहाँ पर स्पिरिचुअल केयर में बैठे हैं, कुछ ऑप्थल्मोलॉजिस्ट बैठे हैं, आंखों के सर्जन, कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा मिलेगी ना। डॉक्टर बनने के बाद भी मुझे आई का डॉक्टर बनना है, कोई ना कोई व्यक्ति ने आपको दिया होगा, इसलिए आपने उस पर मेहनत करके आंखों के डॉक्टर बने हैं। तो आप सब लोगों के जीवन आज जिस जगह पर है, उस जगह पर आने के लिए आपको कहीं ना कहीं प्रेरणा मिली पीछे। उसी तरह से मनुष्य जीवन में भी वो प्रेरणा आपको मिलेगी, तब आप ऐसा समझ सकते हैं कि मेरा जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति करना है। तो संध्या जागृति में हम लोग 30, 35, 40, 45 मिनट तक भगवान के विषय में चर्चा करने का प्रयास करते हैं, ताकि बिजी जीवन में, कष्टमय जीवन में, स्ट्रेसफुल जीवन में कहीं ना कहीं याद दिलाया जाएगा, अरे मैं यहाँ पर क्यों हूँ। यहाँ पर बहुत लोगों को प्रश्न पड़ता है कि मैं क्यों हूँ यहाँ पर हूँ, वाई एम आई हियर। आज सुबह मैंने उधर पीवी दोषी हॉस्पिटल में चर्चा किया था, बहुत लोगों को लगता है ऐसे, मैं क्यों हूँ, वाई एम हियर, इतना तकलीफ हो रही है। उसको बंद करने को नहीं आता तो बंद करने को सिखाओ। कैदी व्यक्ति को अगर लगेगा ना ऐसे, यही अच्छा है, दो वक्त की रोटी मिल रही है, थोड़ा अंग मेहनत के लिए पत्थर तोड़ने का काम भी मिल रहा है। कोई कोई लोग प्रेग्नेंट अवस्था में जेल में आते हैं गुनाह करके, और उनके बच्चे का जन्म जेल में होता है, वो जेल में ही बड़ा होता है, उसको लगता है जेल ही मेरा घर है। तो कोई बताएगा, नहीं बेटा, जेल तुम्हारा घर नहीं है, घर तो बाहर होता है, ये तो जेल है। तो जब तक उस बालक को ज्ञान नहीं होता है ये तो जेल है, इसको कैद बोलते हैं, और एक कोई शहर होता है बाहर जिसमें लोग आराम से रहते हैं, कोई पत्थर तोड़ने का काम नहीं करते हैं पनिशमेंट के रूप में। जब कोई उसको ज्ञान देगा ना, तब बच्चे को पता चलेगा, ये जो यहाँ दिखता है ना, ये सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 16, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो बाहर है, मुझे यहाँ से बाहर जाना होगा। वही व्यक्ति वहां से बाहर जाने का प्रयास कर सकता है, इज इट नॉट ट्रू। नहीं तो आजकल लोग क्या करते हैं, वो जेल के अंदर ही एयर कंडीशन, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, 5-स्टार होटल का खाना वहीं मंगा लेते हैं, गद्दे वद्दे वही मंगा लेते हैं, ऐसे फूड को वही रहना है वही घर है उनका, सारी घर की सुविधा वही मंगा लेते हैं। लेकिन वो प्रयास नहीं करते कि जल्दी मैं कैसा डिस्काउंट लेके बाहर निकल जाऊँ, यहाँ से वापस मेरे घर पे जाके रहूँ, है ना। फिल्म स्टार लोग क्या करते हैं, वो जेल में भी बढ़िया व्यवस्था करने का कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो मूर्खता है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है, अगर उसको जेल में जाना पड़ रहा है तो जेल से बाहर कैसे निकलूँ अच्छी तरह से, जायज तरीके से, वो कोशिश करेगा उसके लिए, वो सही व्यक्ति है। तो हम लोग भी अगर जी रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, अच्छा है, खाना पीना खा रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, किसी को चीटिंग नहीं कर रहे, कष्ट नहीं दे रहे हैं, तो क्या तकलीफ है इसके अंदर। नहीं भाई, लेकिन यहाँ पर आराम से रहने के लिए जिंदगी नहीं दी आपको, इत्मीनान से रहने के लिए, ये जिंदगी यहाँ से निकल कर बाहर जाकर भगवान को मिलने के लिए दी गई है। ओ ऐसा है क्या, तो उसके लिए क्या करना होगा, संत से मिलना होगा आपको, संत आपको गाइड करेंगे, फिर आप एक दिन इस जन्म मृत्यु के जंजाल से मुक्त हो जाएंगे, तब आदमी का भाग्य उदय होता है। नॉलेज मिलने के बाद, नॉलेज सबसे बड़ी बात है, हु एम आई, मैं कौन हूं, ये सबसे बड़ी जानकारी प्राप्त होती जीवन में होती है, मनुष्य जीवन में। आप बोलेंगे मैं तो पुरुष हूं, 40 साल का डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, या तो कोई प्लम्बर हूं, लेकिन वो आपकी पहचान नहीं है। आपकी सही पहचान वो नहीं है, सही पहचान है कि आप आत्मा हो, भगवान के अंश हो, बाद में फिर वायरमैन बने हो, बाद में फिर डॉक्टर बने हो, अलग बात है, वो ऊपर की बात है, वो एंड में मिलो, एंड में आप 90 ईयर्स में, मेरी मम्मी 90 ईयर्स के अभी, वो ना अभी माता है, ना ग्रैंड माता है, ना वो सुंदर औरत है, या कुछ भी नहीं है अभी, सब कुछ उसकी जो उपाधियां थी वो खत्म हो गई अभी। वैसे मैं आज हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ, ट्रस्टी हूँ, फलाना हूँ, वैसा हूँ, वैसे डॉक्टर हूँ वगैरह हूँ, जब मैं 90 साल का हो जाऊँगा ना, ये सारी उपाधियाँ समाप्त हो जाएंगी, उस समय कुछ भी नहीं कर पाऊँगा मैं, एक ऐसे रहूँगा, याद भी रहेगा नहीं। मेरी मम्मी मुझे पूछती रही बार बार, तू कौन है, तो मैं बोलता तुम्हारा छोटा बेटा हूँ, मेरा नाम ये है, दिन में 4 बार पूछती है मुझे, तुम कौन हो, मतलब उसको भी, वो भी भूल गई है, वो सब कुछ डिमेंशिया में भूल गई है। इसका मतलब क्या है, इसी जीवन में भी आपकी सारी उपाधियां समाप्त होने वाली हैं, जो आज आप इस पे इतना गर्व से घूमते हो उसको लेकर, कि मैं फलाना हूं, अंतिम घड़ी में सारी उपाधियां खत्म हो जाती है। वैसे ही स्थिति आपके जन्म के समय भी होती है, आप कोई भी नहीं होते उस समय। बाद में आपको नाम मिलता है, बाद में आपकी जाति संस्कार होता है, बाद में आपका सरनेम होता है, बाद में आपका मामा काका बनता है कोई, बाद में आपका उपाधि धनी अमीर सुंदर गरीब वो सब बाद में बनता है। लेकिन जन्म के समय पर क्या होता है? नो उपाधि। एंड में क्या होता है? नो उपाधि। तो बीच का खेल जो है ना वो सब भूल भुलैया है ना। जन्म में भी जीरो थे, एंड में भी जीरो के जा रहे हो, बीच में बहुत सारे अंकों के साथ में आपने खिलवाड़ किया, लेकिन सारे अंक जितने बड़े बड़े बनवाए आपने वो सारे अंक एंड में जाकर जीरो ही बन जाते हैं। वो सारे जीरो अगर मिलाएंगे आप तो भी वो जीरो ही बन जाते हैं, लेकिन वो जीरो के सामने एक लगाया तो हर एक जीरो को वैल्यू हो जाती है ना। एक जीरो तो 10 हो जाते हैं, दो लगाएंगे तो 100 हो जाते हैं। एक खाली रखा है उसके सामने, ऐसा एक फिक्स रखा है इधर, जीरो ऐड करते जाओ वो हर एक जीरो से एक एक वैल्यू 100 गुना 10 गुना 1000 गुना बढ़ जाती है। तो वो एक क्या है? वो एक भगवान है। एक भगवान आपको जीवन में जोड़ देंगे ना आप, तो जो जीरो जैसे आपके सारे प्राप्ति है ना यहाँ पर, आप डॉक्टर बने हो, धनवान बने हो, सुंदर बने हो, ये बने हो, वो बने हो, बड़े बुद्धिमान बने हो, बड़े प्रभावशाली बने हो, बड़े अच्छे पद पे हो, बड़े प्रभावशाली बड़े पावरफुल व्यक्ति हो, आप सारे जीरो की तरह है। मैंने जीरो क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वो अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे ना अपने आप ही बाद में जीरो बनने वाले हो। आज कुछ है लेकिन नेचुरल कोर्स ऑफ टाइम में वो अपने आप जीरो बनने वाले, इसलिए वो जीरो ही है। और ये सारे जीरो आप ऐसे जोड़ते जाएंगे ना तो उसकी बेरीज जो है ना क्या कहते हैं उसको, सम जीरो होती है। लेकिन अगर एक सामने रखेंगे ना उसके तो सारे जीरो को वैल्यू प्राप्त होती है और उसको मनुष्य जीवन कहते हैं। सारे जीरो को वैल्यू प्राप्त करने की कला जो है केवल मनुष्य जीवन में ही होती है, और किसी भी जीवन में शून्य को मूल्यवान बनाने की शक्ति नहीं होती है। इसलिए मनुष्य जीवन की कीमत समझने का प्रयास करना चाहिए। जिस मनुष्य के जीवन में भगवान का परिचय नहीं है वो एक बड़ा जीरो है। आपको लगेगा बाप रे कितना बड़ा जीरो है, कितना गर्व है उसको जीरो पर, है ना। किसी को धन पर है, किसी को सौंदर्य पर है, किसी को विद्या पर है, किसी को बुद्धि पर है, किसी को अधिकार पर है, लेकिन वो बहुत बड़ा जीरो होता है। लेकिन जीरो कितना भी बड़ा होगा ना, लेकिन वो होता जीरो ही है, ये ध्यान रखना इस बात का। हमको ये अगर समझ में आया ना तो हमारा जीवन सफल हो गया। और वो एक जो है वो प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन खर्च करना चाहिए, क्योंकि एक ही बारी सभी चीजों को मूल्य देता है, सभी वस्तुओं को मूल्य देने वाला वो एक जो है भगवान, वो जीवन में अपनाएंगे तो आपकी बुद्धि भी वैल्यूएबल है, आपका धन भी वैल्यूएबल है, आपका सौंदर्य वैल्यूएबल है, आपका पद भी कीमती है, हर चीज आपकी वैल्यूएबल है, आपका आंखों का ऑपरेशन करने का स्किल भी वैल्यूएबल है, अगर वो एक आपके जीवन में है। नहीं तो सब कुछ जीरो है, क्योंकि वो जीरो ही होने वाला है आगे जाकर। आपको उसको कीमत देना है, ये जानते हुए कि अगर मैं नहीं भगवान को नहीं पुकारूंगी, नहीं लूंगी जीवन में, तो वो भी मेरा जो स्किल है वो आज भी जीरो है, आगे भी जीरो ही रहेगा। क्योंकि जानवर भी अपने पेट को भरते हैं मेहनत से, और आप भी भरते हो कुछ कला से, आप वायरिंग करके भरते हो, आप आंखों का ऑपरेशन करके भरते हो, कोई और बिजनेस करके भरता है, और कोई भीख मांग के भरता है, लेकिन सब लोग पेट भर रहे कि नहीं अपना, एंड रिजल्ट क्या है उसका? आप अपने तरीके से भर रहे हो और वो अपने तरीके से भर रहे हैं, लेकिन भर तो पेट ही रहे हो ना, सो नथिंग ग्रेट अबाउट इट। अरे जानवर तो हमसे हर स्थिति में ऊपर है। देखो आप मुझे बताइए, एकदम ऑनेस्टली बताइए, विचार करके बताइए कि जो चूहे चूहा होता है ना वो एक साथ 6 बच्चे को जन्म देता है, एक कुत्ती जो होती है वो भी एक साथ कभी कभी 6-6 बच्चे को जन्म देती है, और आपके पास तो पति है आपका, और डिलीवरी रूम है, डॉक्टर है आपके पास, नर्सिंग होम है, घर में भी दाई है आपके पास, कपड़े इसकी व्यवस्था है, कितनी सारी सुविधा होती है, फिर भी जब एक बच्चे को आप जन्म देती हो कितना मेहनत करते हो आप लोग, सोचो आप। और कुत्ता और चूहे की जिंदगी में ना पति होता है, पति तो अपना प्रेग्नेंट करके चला जाता है, बाद में कौन पति, पहचान भी नहीं किसी की, वो माता बेचारी 6 बच्चों को पालती है, उसके पास कोई इनकम का साधन नहीं है, वो डिलीवरी करके थक गई होती है, बच्चों को दूध पिलाना होता है, खुद का पेट भरना होता है, फिर कोई और कौवा आएगा और कोई घार आएगी तो उससे रक्षा भी करनी होती है खुद की और बच्चों को भी, ये सारी चीज अनिश्चित चीजों में वो मेहनत करके वो सभी बच्चों को बड़ा करते कि नहीं, तो आप बताओ आपका स्किल बढ़ा कि चूहे का स्किल बढ़ा? उसके पास कोई साधन ही नहीं है, कोई घर नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, वो आपके घर में आंगन में इधर छुप छुप के बच्चे को जन्म दे रहा है, वहाँ पाल रहा है उसको, आप उसको भगा रहे हो इधर से, कितना देर भूखा रहता है वो, हमारे ग्रिल के अंदर कितने कबूतरों ने जन्म दिया बालकों को, वो दिन भर बाहर घूमती रहती है भूखी कबूतर की मादी कबूतर, लेकिन अपने मुंह में खाना लाके पहले बच्चों को खिलाती है, फिर अपना पेट भरती है, उनके कौओं से रक्षा भी करती है, सुरक्षा भी करती रहती है, ना घर है ना ठिकाना है ना कोई परमानेंट कोई व्यवस्था है ना कोई सिक्योरिटी है, कुछ है ही नहीं, इतने में भी वो अपने बच्चे को बड़ा करते हैं, बोलो। और हम लोग बोलते हैं बच्चों को, तुमको मैंने इतना पाल पोस के बड़ा किया, यही दिन देखने के लिए बड़ा किया, तो बच्चा क्या बोलता है, अरे पापा कुत्ता भी जन्म देता है बच्चे को, तुम क्या बड़ी बात कर रहे हो, पापा को सुनना पड़ता है, बात सच है ना, आजकल के बच्चे ऐसे बोलते हैं, मैंने बोला था क्या जन्म देने के लिए मेरे को, आपने जन्म दिया, अरे क्या क्या बोलते, मैं भी आप कथा में बोल नहीं सकता, ऐसे बिंदास बोल देते माता पिता को, किसने कहा था तुमको ऐसा करने के लिए, मैंने नहीं कहा था, आपने बुलाया था, आपका कर्तव्य है मुझे पढ़ा लिखाना खाना खिलाने का, क्या बात कर रहे हैं आप, इसका मतलब क्या हुआ, बेसिक बेसिक ड्यूटी में भी जानवर हमसे श्रेष्ठ है कि नहीं बताओ, इट इज ट्रू, लेकिन एक ही चीज में जानवर हमसे बड़े नहीं है, वो है अध्यात्म, वो है भक्ति मार्ग में, वो उसमें उनको कुछ गति नहीं, नो नॉलेज नो गति नो फैसिलिटी ऑल्सो। तो अभी इतना प्रस्तावना देने के बाद में मैं आज की कथा का आरंभ करता हूं, ठीक है ना, हरे कृष्णा। तो वो ये है कि भगवान अवतार लेते हैं हम लोगों को बोध देने के लिए, बार बार आते हैं, संभवामी युगे युगे आते रहते हैं, उसमें भगवान के एक छठवें अवतार थे, उनका नाम क्या था, परशुराम जी भगवान। पृथ्वी पर क्षत्रियों का आतंक बढ़ गया था बहुत, क्षत्रिय अपने अधिकार और बल से बहुत मस्ती में आ गए थे, दुरुपयोग कर रहे थे उसका, तो उनका संहार करने के लिए वो आए, क्षत्रियों का मद और मस्ती को नष्ट करने के लिए भगवान ने अवतार लिया परशुराम, क्योंकि परशु लेकर आए थे वो। तो रुचिका मुनि का विवाह सत्यवती देवी से हुआ, उनको जमदग्नि नाम का पुत्र प्राप्त हुआ जो आगे जाकर बड़े ऋषि बने, जमदग्नि ऋषि, इनका विवाह रेणुका से हुआ और इनके पुत्र के रूप में परशुराम जी जन्म लिए। तो जब जन्म लिए तो बहुत ब्राह्मण थे ना वो, बहुत तपस्वी थे, बहुत सिंपल झुपड़ी में रहते थे, लेकिन बहुत पावरफुल थे, शक्ति से ज्ञान से विद्या से बल से, लेकिन रहणीमान मुंडा पड़ना रहणीमान एकदम सिंपल। एक था राजा कार्तवीर्य अर्जुन, वो इतना बलवान था ना, उसको कहते हैं हजार हाथ थे उसको, बहुत प्रसिद्ध था, बहुत सुंदर था, बहुत शक्तिशाली था, बहुत उससे गर्व था उसको। तो एक दिन वो ना जमदग्नि के आश्रम में आया, और जमदग्नि के आश्रम में ना एक गाय थी, उसका नाम था कामधेनु, आपको क्या चाहिए, वो सब कुछ वो गाय देती थी, वॉट एवर यू वॉन्ट। वैसे उनकी चाहत तो कुछ थी नहीं कि मुझे बंगला चाहिए गाड़ी चाहिए ऐसा चाहिए, लेकिन भक्तिमय तपस्वी जीवन के लिए भी कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, कंदमूल चाहिए भाई समझो, कुछ भी यज्ञ की लकड़ी चाहिए यज्ञ करना है, ऐसे सभी वस्तुओं का इंतजाम वो कामधेनु करती थी। तो ये जब आया ना, देखा अरे मैं तो राजा हूं, इतना धन संपत्ति मेरे पास है, कामधेनु मेरे पास नहीं है जो ये राजा ये ऋषि के पास में है। तो उसने क्या किया ना, जबरदस्ती वो कामधेनु को उठा के ले गए वो बलपूर्वक। तभी हमारे परशुराम बालक जो थे ना, कहीं गए थे जंगल में पिताजी के आज्ञा से, आके देखते तो क्या हुआ कि जमदग्नि ने, जमदग्नि के सामने बलपूर्वक राजा ने आकर उसकी कामधेनु को छीन के अपने राज्य में लेके गया वो। तो ये बालक को बहुत गुस्सा आया, परशु लिया सीधे उधर गया, किधर महिष्मति राज्य में गया, जो आज नॉर्थ इंडिया में उनको जगह है वो महिष्मति, उधर गया और अपने परशु से उसने कार्तवीर्य अर्जुन का वध कर दिया और गाय को वापस लेके आया पिताजी को। जब गाय को वापस लेकर कुछ दिन बीत गए, लेकिन कार्तवीर्य अर्जुन था ना उसके भी बहुत बेटे थे, उनको बहुत बड़ा गुस्सा आया, अरे मेरे पिताजी का वध करके चला गया, अपमान हो गया हमारा। तो उन्होंने क्या किया, परशुराम तो बहुत बलशाली थे वो डरते थे उनसे, लेकिन परशुराम जी जब बाहर चले गए थे ना तब ये घर पे गए और उन्होंने जमदग्नि का वध कर दिया। कैसा होता है ना रिवेंज, मैं बदला लूंगा, मेरे पिताजी का बदला वध किया तो तुम्हारे पिताजी का वध करूंगा, इस तरह से जब परशुराम लौट के आए तो क्या देखा, पिताजी मृत होकर पड़े हुए हैं। तो माता ने सब कहानी बताई तो परशुराम को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, 21 बार पृथ्वी का प्रदक्षिणा किया उन्होंने, 21 बार, और जो मिलेगा उस राजा का वध किया उसने, जो भी राजा बोल के सामने उसका खत्म करके चला गया। इतना बल था परशु में उनके, जितने भी क्षत्रिय राजा थे पृथ्वी में, जितने बलशाली राजा थे, इतने प्रसिद्ध और कीर्तिमान बलवान राजा थे ना, वो सब लोग का वध कर दिया उसने, अकेले व्यक्ति ने। अभी एक बार राउंड राउंड मारा ना, तो उन्होंने एक डिस्काउंट दिया था उनको कि मेरे परशु से कौन बचेगा। बोलते जो राजा औरतों को गोल बनाकर बीच में बैठेगा ना, उसको नहीं मारूंगा मैं, उसको क्या बोलते हैं नारी कवच, समझे आप, जैसे आप नारी बैठे यहां पर, मैं आपके बीच में आके आप गोल बैठ गए मेरे, तो कवच कर देना मुझे आपने, तो मुझे वो नहीं मारेंगे। तो कई राजा जो है ना, उनके बल से भयभीत होकर अपने राज्य के बहुत स्त्रियों को गोल बनाकर बीच में बैठते थे, तो उसको देखकर ये परशुराम जी हंसते थे और छोड़ के चले जाते थे, चलो नारी कवच को छोड़ दो। और एक उन्हें डिस्काउंट दिया था, ये था कि जो राजा जब मैं हमला करने आऊंगा उस समय विवाह करता होगा ना, विवाह मैरिज, किसी का भी विवाह चलता होगा, तो उसको मैं नहीं मारूंगा। तो ये परशुराम आने का खबरदी आ गई, आ रहे हमला करते हुए, तो तुरंत किसी को भी पकड़ के उसके हाथ में शुभ मंगल सावधान कर देते हो, उस समय पर वो एंगेज होना चाहिए उस विधि में। तो ऐसे बहुत सारे राजा बच गए जो नारी कवच रूप में बचे, कोई विवाह के रूप में बचे। कहते हैं दशरथ महाराज ने 350 विवाह किए केवल परशुराम के भय से। उस समय थे परशुराम वहां पर, राम के समय पे थे उधर, राम के पहले उनका अवतार हुआ है ना, तो जब दशरथ राजा जवान थे और राम भगवान जवान बच्चे थे, तो हर बार जब आते थे ना वो, तो इन्होंने एक 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 करके 350 विवाह किए, तो उनको कितनी पत्नियां हो गई, 353, 350 ऐसी पत्नियां और तीन कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। ये भी हकीकत है क्योंकि इतने बलवान थे वो, पूरा विश्व भयभीत था उनसे। तो 21 बार उद्दंड क्षत्रियों का संहार करने के बाद में वो शांत हो गए, बोला अभी ठीक है, बहुत सारा साफ सफाई कर लिया मैंने, महा क्लीनिंग अभी ये उद्दंडता कम हो गई, या तो भय से कम हो गए मेरे उद्दंड लोग को मैंने काट दिया, और जो बचे हुए हैं तो वैसे ही शांत हो गए, अभी वो ज्यादा नाटक नहीं करेंगे, धर्म के विरुद्ध काम नहीं करेंगे। एक तो धर्म के विरुद्ध काम क्या किया, अपने गर्व से क्या किया, अरे एक ब्राह्मण के गाय को लेकर चला गया, वो राजा होते हुए भी धर्म के विरुद्ध काम किया कि नहीं, उसका दंड दिया उसको, तो और जाकर पाप किया उसके ऊपर, तो फिर सबके पाप का सामूहिक इलाज किया उन्होंने एक साथ ही, जो पता होगा या नहीं पता होगा, सारे पापों का एक साथ होलसेल में इलाज कर दिया, इतना बोलता आयन घुमा दिया पूरे, सब कपड़े का सब जितना भी फोल्ड था वो सब खत्म कर दिया उन्होंने, एकदम कड़क बना दिया कपड़े को। लेकिन भगवान भी जब कार्य करते हैं ना पृथ्वी पर आकर, वो धर्म का ही कार्य करते हैं, संभवामी युगे युगे, है ना, तो वो उदाहरण के रूप के एक प्रायश्चित भी करते हैं। कहते हैं परशुराम ने जो आतंक मतलब जो हमले किए ना, इतना खून बहाया उन्होंने कि खून की नदियां बहने लगी उनके राज्य में उस समय, तो उन्होंने क्षत्रियों का खून इकट्ठा करके 7 बड़े कुंड बनाए कुरुक्षेत्र के एरिया में, आज भी है वो सन्निहित सरोवर, अभी तो पानी है उसके अंदर, लेकिन उस समय जितने क्षत्रियों को मारा उनका खून सब इकट्ठा करके वहां जमा कर दिया, ऐसे पावरफुल थे वो, बहुत जबरदस्त। लेकिन बाद में उन्होंने प्रायश्चित करने का सोचा, तो ना हमारे ये हमारे गांव की कथा है बाय द वे, हमारा गांव उडुपी है कर्नाटक में, और वो जो कर्नाटक शुरू होने के पहले गोवा राज्य आता है, और गोवा के पहले महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के एंड में आएंगे तो गोवा आएगा, पणजी ये सब आएगा, उसके आगे फिर कर्नाटक शुरू होता है, तो कर्नाटक शुरू होता है ना उसके ऊपर एक जगह है बिगिनिंग, गोकर्णेश्वर, गोकर्ण वहां से हमारा गांव शुरू होता है। तो गोकर्ण में आए वो, और गोकर्ण में परशुराम ने जी ने परशु को फेंका दक्षिण की ओर, समुद्र किनारे खड़े, ऐसे बाजू में समुद्र है, समुद्र किनारे खड़े ऐसा परशु फेंका दक्षिण की ओर, कन्याकुमारी तक परशु गया, और वो परशु जहां तक पहुंचा वो 1000 किलोमीटर जमीन का पट्टा जो 100 किलोमीटर चौड़ा था वो समुद्र को पीछे ढकेल दिया उन्होंने, मतलब वरुण देव समुद्र देवता है ना वरुण देव, उनसे उतना जमीन उन्होंने ले लिया, समुद्र पीछे हटकर उन्होंने जमीन पैदा किया, हम लोग क्या बोलते हैं उसको अपने भाषा में, रेक्लेमेशन, किधर है रेक्लेमेशन बताइए, बैंड्रा रेक्लेमेशन, मतलब वहां समुद्र था पहले, उसको भराव करके समुद्र को पीछे किया। लेकिन हम लोग जब करते हैं ना वैसे सुनामी आता है एज अ रिएक्शन, लेकिन परशुराम जब करते हैं तो भगवान है उनकी इच्छा से, फिर वरुण देव ने इच्छा पूरा कर दिया। तो वो जो 100 किलोमीटर चौड़ा और 1000 किलोमीटर लंबा जो पट्टा जमीन का तैयार हो गया ना, वो उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया एकदम सागर संगीत मतलब नियम के अनुसार। 10 ऋषियों को उन्होंने बुलाया जो आज हमारे कुलों के क्या कहते हैं उसको गोत्र ऋषि हैं, जिनसे हमारे कुल आरंभ हुए बहुत सारे। वो 10 ऋषियों को, महान ऋषियों को बुलाया और उनको उन्होंने वो भूमि दान दे दिया और ऐसा आशीर्वाद दिया कि ये भूमि में कभी भी किसी फल फूल धन धान्य की कमी नहीं होगी। जल इतना रहेगा कि आप हमारे गांव जाएंगे ना, ट्रेन में बैठेंगे कभी यहाँ से केरला जाने के लिए, तो आपको ना 10 मिनट के बाद एक नदी आएगी। हर 10 मिनट के बाद आप गिनते रहो, अगर जगे रहोगे ना तभी आप गिनो, सैकड़ों नदियां हैं सैकड़ों यहां से कन्याकुमारी तक, मतलब कभी भी आपको जल की कमी नहीं होगी, वर्षा की कभी कमी नहीं होगी, वातावरण भी समतल रहेगा हमेशा, फल फूल धान्य इतने भरे रहेंगे कभी कोई भूखने का सवाल नहीं उठता है। और इस तरह से मैंने प्रकृति को इतना समृद्ध बना दिया है ताकि आप लोग अपना भजन अपने अनुयायियों के साथ में अच्छी तरह से कर सकते हो, आपको और आपके फॉलोअर्स लोगों को पारिवारिक जनों को कभी कोई कमी नहीं होगी, इसलिए आपका जीवन का कर्तव्य आप अच्छी तरह से निभा सकते हो। तो क्या आप बोलेंगे काय करणार प्रभु जी, मैं गरीब आहोत ना, आपल्याला खायला पण अन्न नाही, भजन कसं करणार, भक्ती कशी करणार आम्ही, ऐसा लोग बोलते हैं। क्या करेंगे, पेट भरने को साधन नहीं तो आप भजन कैसे करेंगे, पेट भरने का ही साधन नहीं है। आप लोग धनी हो आप तो कर सकते हो भजन भगवान का, आप पढ़े लिखे भी हो, ऐसा बोल सकते हैं आप, आपको कोई कमी नहीं होगी। ओके, अच्छी तरह भजन करो, जीवन का उद्देश्य प्राप्त करो, समृद्ध रहो, कोई चिंता नहीं करो आप आराम से। लेकिन कभी कुछ समस्या आपको आएगी ना, ये मंत्र लो मेरा, ये मंत्र का उच्चारण करो, सब साथ में मिलकर आके बैठकर मुझे पुकारो, इस मंत्र के माध्यम से मैं आऊंगा और तुरंत आपके समस्या का समाधान करूंगा ताकि आप दोबारा वापस भजन कर सकते हो अच्छी तरह से। ऐसे बोल के वो महेंद्र पर्वत पर चले गए तपस्या करने के लिए। जीवन कार्य उद्देश्य अवतार कार्य समाप्त हो गया अभी, और महेंद्र पर्वत पे गए और भजन करना शुरू किया अपने तपस्या। यहाँ पर 10 ऋषि जो है ना वो अपना जीवन चलाने लगे। बहुत साल बीत गए, कोई नैसर्गिक आपत्ति नहीं आई, कोई संकट नहीं आया, कोई पीड़ा नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं हुई, और सब लोग बढ़िया जीवन अपना भजन कर रहे हैं फर्स्ट क्लास, कोई कमी नहीं है किस बात की। एक दिन ना सभी 10 ऋषियों को एक बार मन में विचार आया, अरे उस मंत्र का क्या हो गया, वो मंत्र का क्या हो गया, वो तो हमने इस्तेमाल ही नहीं किया कभी। तो कुछ लोग बोलते, अरे तो उन्होंने कहा था ना संकट आने के बाद का, संकट किधर आया अभी तक, भूल जाओ उसको। नहीं नहीं, बाकी लोगों को कुतूहल बढ़ता रहा, बोला कुतूहल एक बार ट्राई तो करना चाहिए। ऐसा किसी को ट्राई करने का कुतूहल हुआ था क्या पहले, याद है आपको, कोई याद आ रहा है आपको? कुंती महारानी, उसको भी 5 वरदान मिले थे 5 मंत्रों द्वारा, उसको भी उत्सुकता थी यूज करने की, शादी के पहले यूज कर लिया, शादी के पहले ही माँ बन गई वो मंत्र के प्रभाव से। वैसे उनको जरूरत नहीं थी, फिर भी उनको कुतूहल है मंत्र का उत्सुक कर रही, देख तो सही क्या हो रहा है। तो क्या कहा था, सबको साथ में आकर आपको ये मंत्र उच्चारण करना है, फिर मेरे मैं अवतार मतलब मैं प्रकट हो जाऊंगा। अरे इन्होंने जैसे मंत्र उच्चारण किया ना, परशुराम जी प्रकट हो गए वहां पर। बोलो वत्सों क्या कष्ट है आपको? नहीं महाराज कुछ कष्ट नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। फिर क्यों मंत्र पुकारा आपने? नहीं ऐसे ही हमको कुतूहल हुआ इसलिए हमने एक ट्रायल लिया। ट्रायल? अच्छा ट्रायल लिया आपने, मतलब आपने संदेह किया मुझ पर, जो मैंने कहा आप उस पर पूरा श्रद्धा न रखते हुए आपने शंका किया मेरे ऊपर, उसका दंड भुगतना पड़ेगा आपको। आज से सब लोग तुम लोग असमृद्ध हो जाओगे और तुम्हारे अंदर की एका एका एकता जो है एक ही वो खत्म हो जाएगी। अभी आज अगर आपको मैंने बोला ना कि आपका फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगा, अरे क्या है खल्ली वल्ली, हु केयर्स यार, और दोस्त ढूंढ लेंगे, ऐसा बोलेंगे आप। लेकिन संतों के लिए संतों का संग और मैत्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिनके साथ पूरा जीवन बिताया भजन करते हुए एकाग्रता से, उनका संग छूटने का शाप मिला तो बहुत परेशान हो गए वो, एकदम गिरिरा के भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान हम लोग ऋषि मुनि है लेकिन हम लोग मूर्ख है, भगवान हम माफ कर दो हमको आप। तब जाकर भगवान थोड़े ठंडे हो गए। वैसे परशुराम जी तो बहुत गर्म ही होते हैं हमेशा। उन्होंने कहा ठीक है, आने वाले क्या कहते हैं उसको, धन धान्य उगने का जो मौसम होता है ना उसको क्या बोलते हैं, जब ऐसा समय आएगा ना तो आप 9 दिन तक विष्णु भगवान को सिंहासन पर बिठाकर उनकी सेवा करना, फल फूलों के साथ धन धान्य के साथ। तो उसके बाद में फिर आप मेरे शाप से मुक्त हो जाओगे। तो वो जो उत्सव है ना 9 दिन का, उसको ओणम कहते हैं। जब विष्णु भगवान को सिंहासन पर स्थापन करते हैं और सबको भोजन कराते हैं, भगवान को भी कराते हैं, सबको प्रसाद बांटते रहते हैं बिना धर्म जाति का भेद करते हुए, तो वो ओणम का उत्सव है। और यही पूरे गोकर्ण से लेकर पूरी उडुपी, मैंगलोर, केरला, तमिलनाडु और बाद में कन्याकुमारी तक जो पट्टा है ना, उसको कहते हैं परशुराम क्षेत्र। और परशुराम का आज भी वहाँ वरदान है। इतना दुनिया में बारिश नहीं हो रही है, अकाल पड़ रहा है, लेकिन हमारे गांव में कभी भी कोई अकाल की बात नहीं होती है। कभी भी पर्याप्त मात्रा में जल है, पर्याप्त मात्रा में नारियल है, चावल है, जो चाहिए सब कुछ है उधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब मैंने क्यों बताया, क्योंकि हम लोग वहाँ पर यात्रा पर जाने वाले हैं। अभी कुछ ही दिन में हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं यात्रा करने के लिए। गोकर्ण से लेकर कन्याकुमारी तक हजारों क्षेत्र हैं, हजारों जगह है, हजारों स्थान है जहाँ भगवान ने लीला किया है, पवित्र क्षेत्र है। एक हमारे उडुपी शहर में भी सैकड़ों मंदिर हैं, अलग अलग कथा है हर एक मंदिर की, एक छोटे से क्षेत्र में। ये तो पूरा पट्टा है 1000 किलोमीटर का, हर एक जगह पर लीला है भगवान की। तो उसमें से कुछ कुछ का दर्शन करने के लिए हम 27 दिसंबर को जाएंगे और 31 तक वहाँ रहेंगे और अद्भुत स्थानों का दर्शन करेंगे और कथाएँ बताएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। बहुत बहुत धन्यवाद।